हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 40 घंटे हो चुके थे, जोया को अभी तक होश नहीं आया था। अभीर ने जोया के वार्ड के सामने पूरी रात और दिन जागकर गुजारा था। पूरे दो दिनों से उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। अभीर बस यही दुआ करता रहा था कि जोया ठीक हो और जल्द से जल्द उसे होश आ जाए। रात का तीसरा पहर था, अचानक जोया के वार्ड में डॉक्टरों की आवाज़ें नगने लगीं। अबीर चौंक गया और उसने उनमें से एक डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ? तब उनमें से किसी ने बताया, मैडम को होश आने लगा था, लेकिन अचानक वो तेज तेज सांस लेने लगीं और उसके बाद बेहोश हो गईं। जैसे ही अबीर ने ये सुना, उसे ऐसा लगा मानो उसकी सांसें थम सी गई हों और वो पागलों की तरह वार्ड की तरफ दौड़ा। उसने शीशे के द्वारा जोया को देखा, जहां डॉक्टर चेस्ट प्रेस कर रहे थे और उसे सांस दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी डॉक्टर कमरे से बाहर आ गए। अबीर ने उनसे पूछा, जोया ठीक तो है ना? सभी डॉक्टरों की गर्दन झुकी हुई थी। अबीर के सवाल का कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। अबीर का पारा अब हाई होने लगा था। वो चिल्लाकर बोला, मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बीवी जोया ठीक तो है ना? तब उनमें से एक डॉक्टर ने हिम्मत करके कहा, सर, उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और अगर अगले दो घंटे में वो होश में नहीं आई तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अबीर ने जैसे ही ये सुना, उसे लगा उसके शरीर का आधा हिस्सा बेजान हो चुका हो। उसे अपना शरीर बेजान सा महसूस होने लगा। अबीर मरे हुए कदमों से जोया के वार्ड के अंदर गया। उसने देखा जोया एक बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। जोया को देखकर अबीर की आंखें भर आईं और वो मरा सा कदम रखता हुआ उसके पास जा बैठा। अबीर ने जैसे ही जोया के चेहरे की ओर देखा, वो चौंक गया, क्योंकि जोया के होठों के पास गहरे नीले निशान थे जो अबीर ने ही उसे दिए थे। जोया के हाथ, गर्दन, हर जगह निशान बने हुए थे। अबीर उन्हें देखकर खुद के बाल नोचने लगा। ये सब कुछ अबीर ने ही उसके साथ किया था। जोया की हालत बहुत ही दयनीय लग रही थी। अबीर को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो गलती उससे हो चुकी थी उसकी भरपाई अब इतनी आसानी से नहीं होने वाली थी। अबीर ने एकाएक जोया का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों के पास उसके हाथ को रखते हुए रोते रोते बोला, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ जोया, मुझे छोड़कर मत जाना, मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। मैं वादा करता हूँ जो भी मुझसे गुनाह हुआ है उसका पछतावा ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई है मैं उन सब की भरपाई ज़रूर करूँगा। बस प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। मैंने मोहब्बत के नाम पर तमाचा मारा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझ में और तुम्हारी इज्जत के गुनाहगारों में अब कोई फर्क नहीं है। मैं अपने गुस्से की आग में इतना अंधा हो गया कि मैं ये भी भूल गया कि जिस लड़की को मैं तकलीफ दे रही हूँ वो मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और मैं अपने गुस्से की आग में अपनी इज्जत को रौंदने चला था। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जोया, तुम्हें लौटना होगा, तुम्हें वापस आना होगा, होश में आना होगा। मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तुम्हें आना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं है, तुमने एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, उसके लिए तुम्हें आना होगा, आना होगा, आना होगा। ऐसा कहकर अबीर जोया का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। अबीर का इस तरह से रोना देखकर शायद कुदरत को उस पर रहम आ गया और अचानक जोया के जिस्म में हरकत होने लगी और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। अबीर जोया को होश में आता देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो जोर जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ, मेरी बीवी को होश आ रहा है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जैसे ही अबीर ने ये कहकर चिल्लाना शुरू किया, वैसे ही कई डॉक्टर वहां आ गए और अबीर को वहां से बाहर जाने के लिए कहने लगे, ताकि वो जोया का अच्छी तरह से चेकअप कर सकें। अबीर जोया पर नज़र डालता हुआ वहां से निकल गया और बाहर शीशे से देखने लगा। वही डॉक्टर जोया को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद अच्छी तरह से ट्रीट करने के बाद वो बाहर आए और अबीर से बोले, सर, शायद कुदरत को आप पर रहम आ गया है, आपकी मोहब्बत आपकी बीवी को वापस ले आई है। अब मैडम की जान को कोई खतरा नहीं है, वो खतरे से बाहर है। आधे घंटे के अंदर उन्हें होश आ जाएगा और उसके बाद हम उन्हें अच्छी तरह से चेक करने के बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डोंट वरी सर, मैडम अब ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और अबीर उन्हें जाता हुआ देखता रहा और ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं दूसरी ओर अरहम ने जोया की खोजबीन बहुत तेज कर दी थी। न जाने क्यों अरहम को भी अब अरमान की तरह अकरम, रिया और अबीर पर शक होने लगा था। उसे भी लगने लगा था कि जरूर जोया के बारे में इन लोगों को कुछ ना कुछ पता है, क्योंकि जहां तक उसने अबीर के बारे में जाना था उसे ये तो पता चल चुका था कि अबीर जोया से मोहब्बत करने लगा है और जोया अबीर की मोहब्बत को ठुकरा रही है। तो अरहम के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हो सकता है अबीर ने जोया को प्रपोज किया हो और जोया ने उसे इनकार कर दिया हो, इसीलिए अबीर ने गुस्से में आकर जोया का किडनैप कर लिया हो। बस यही सोचकर अरहम अब जोया की तलाश करने लगा था। उसने डिसाइड किया था कि वो अबीर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वहां पर पर्सनली जाकर खुद चेक करेगा और पूरे शहर में अपने स्तर से अबीर की जायज नाजायज प्रॉपर्टी में जोया की खोजबीन करेगा। अरहम ने सोच लिया था एक बार जोया उसके हाथ लग जाए वो उसे अरमान भाई के हवाले करके अपना जुर्म खुद कबूल करेगा, जो जुर्म उसने अपने भाई से झूठ बोलकर किया था कि जोया उसे नहीं मिली है। अरहम को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहिए था। चूंकि अब वो अपने भाई को धोखा दे चुका था, उसी की भरपाई करने के लिए अब वो जोया को ढूंढकर अरमान के सामने पेश करना चाहता था। वो समझ चुका था कि उसका भाई अरमान जोया से सच्ची मोहब्बत करता है, वो जोया के बिना नहीं रह सकता है। लेकिन अरहम को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि अरमान की मोहब्बत मोहब्बत नहीं, एक ज़िद है, दीवानगी है, जुनून है। जोया के लिए वो साइको है। जोया के लिए उसे सिर्फ जोया अपनी आँखों के सामने चाहिए थी ताकि वो उसे देख सके, उसके साथ जो मर्जी आए वो कर सके। वो जोया को अपने साथ रखना चाहता था, हर सूरत में वो उसके साथ रहना चाहता था। अरमान को खुद ये नहीं पता था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि वो जोया के लिए ऑब्सेस्ड हो गया था। वहीं दूसरी ओर अकरम रिया का बहुत ख्याल रख रहा था। अकरम रिया और अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अकरम के जहन में रह रहकर एक सवाल आ रहा था। अबीर ने अकरम से कहा था कि एक दो दिन के अंदर वो रिया को भी जोया के पास बुला लेगा, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा हो गए थे। अबीर ने अभी तक अकरम को ना तो कोई कॉल किया था और ना ही कोई मैसेज। इस बात को लेकर अकरम अब काफी परेशान हो चुका था। वो बस यही सोच रहा था कि जोया और अबीर दोनों ठीक हों। उसे पूरा यकीन था जैसे ही अबीर को टाइम मिलेगा अबीर उसे मैसेज या कॉल जरूर करेगा। इतना वो अपनी बीवी और बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रख रहा था।
जिस तरह से अरमान ने रिया को किडनैप कर लिया था, वो इस तरह का कोई रिस्क अपनी जिंदगी में एक बार फिर नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था रिया किसी भी खतरे में पड़े, इसीलिए अकरम ने सारा काम धंधा घर से ही शुरू कर दिया था। वो अपने ऑफिस का सारा काम अब घर से ही संभाल रहा था। वो रिया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। ये बात अरमान और अरहम भली भांति जान चुके थे और अरहम के मन में भी अब यही आ चुका था कि वो रिया और अकरम से अपने स्तर से पूछताछ करेगा। लेकिन चूंकि अकरम कड़ी सिक्योरिटी के बीच था और वो किसी भी तरह से रिया को अकेला नहीं छोड़ रहा था, तो अरहम के दिमाग में एक आइडिया आया कि किस तरह से वो रिया और अकरम से बात कर सकता है। यही सोचकर अरहम मुस्कुराता हुआ गजाला जी के घर की ओर चल पड़ा था। अरहम जानता था गजाला जी ही ऐसे इंसान हैं जो अबीर के घर पर कभी भी आ जा सकती हैं। अरहम और अरमान को कभी भी अबीर के आदमी उसके घर में नहीं जाने देंगे, लेकिन गजाला जी को रोकने की हिम्मत अबीर के किसी भी आदमी में नहीं थी। यही सोचकर अरहम ने अब गजाला जी का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर आधे घंटे के अंदर अंदर जोया को होश आने लगा था और जैसे ही जोया को पूरी तरह से होश आया उसने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा और फिर अनायास ही जोया का हाथ उसके पेट पर चला गया और अपना पेट खाली देखकर जोया का मन आशंकाओं से भर गया। जोया ने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नर्स जो 24 घंटे जोया के पास मौजूद थी उसने जोया को उठने से रोक दिया। तब जोया ने हल्का सा कमर की टेक के सहारे बैठते हुए दर्द से कहा, मेरा बच्चा सिस्टर, मेरा बच्चा कैसा है? तब उस सिस्टर ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए मैडम, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो अस्पताल के स्पेशल केयर वार्ड में रखा गया है। तब ज़ोया ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए सोचने लगी। एक एक करके ज़ोया के सामने जो कुछ उसके साथ हुआ था वो याद आ गया। ज़ोया ने कभी नहीं सोचा था कि जिसके लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर जगह ले चुका है वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। ज़ोया ने जैसे ही अपने हाथों की ओर देखा और अपने चेहरे को, अपने होठों को, अपनी गर्दन को छूकर देखा, वहाँ पर जगह जगह बाइट के निशान थे। उसमें हल्का हल्का दर्द हो रहा था। ज़ोया का इन निशानों से बहुत पुराना नाता था, तो भला ज़ोया कैसे उन निशानों को नहीं पहचानती।